पृष्ठ संख्या 170, रेलवे संकट और क्रांति, द रेलवे क्राइसिस एंड द रिवॉल्यूशन। 1906 से 1908 ईस्वी के बीच 3 वर्षों की अवधि में छिंग शासन के विरुद्ध कम से कम 7 बड़े विद्रोह हुए। यद्यपि वे सारे विद्रोह असफल हो गए, लेकिन उन्होंने जो चिंगारी उत्पन्न की वह बाद में प्रचंड ज्वाला के रूप में धधक उठे। एक के बाद एक 7 विद्रोहों की असफलता ने लोगों में हताशापन एवं निराशा की भावना को बढ़ाया। सुन को जापान, वियतनाम तथा सिंगापुर से जबरन निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें अमेरिका तथा यूरोप जाना पड़ा। एक अन्य बड़ा विद्रोह अप्रैल 1911 ईस्वी में हुआ, जिसका लक्ष्य पहले कुआंगचोउ पर अधिकार स्थापित करना और तब वहां से चीन के अन्य भागों में फैल जाने का था। यद्यपि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया, लेकिन अंततः यह विद्रोह उस सफल क्रांति का उपक्रम बन गया जो 6 माह बाद बुछांग में आरंभ हुई। सिचुआन रेलवे संकट संभवतः उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में एक था जिन्होंने 1911 ईस्वी की क्रांति को विकसित किया। रेलवे समस्या ने बुर्जुआ तथा भद्रजनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। इसने उन्हें मानचू से विमुख कर दिया, उफनते असंतोष को बढ़ाया तथा इसकी पराकाष्ठा अंतिम विस्फोट में हुई। इसने न केवल छिंग राजवंश को विनष्ट किया अपितु दृढ़ता से स्थापित राजवंशीय व्यवस्था को भी उखाड़ फेंका तथा उसके स्थान पर एक गणराज्य की स्थापना की जिसका चीन में कोई पूर्व दृष्टांत न था। 9 मई 1911 ईस्वी को पेचिंग में एक शाही फरमान जारी किया गया जिसने सारे देश के मुख्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा प्रांतीय व्यापारी भद्रजन वर्गों से उनके निर्माण के अधिकार को वापस ले लिया। इस विषय में वीपी दत्त का कथन है कि यह वही चिंगारी थी जिसने घास के मैदानों में आग लगा दी। द स्पार्क डेट सेट द प्रेरी ऑन फायर। विरोध की एक लहर ने सिचुआन, हुनान, हपेई तथा कुआंगतुंग जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे के साथ साथ देश के अन्य भागों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यद्यपि सारे देश में रोष था, लेकिन यह तूफान सिचुआन में शुरू हुआ तथा क्रांति के तत्कालिक कारणों में से एक सिद्ध हुआ। रेलवे राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि मुद्रा को एकीकृत करने के सरकार के इरादे ने प्रदान की, जिसके लिए विदेशी बैंकों से 10 लाख तथा 60 लाख पाउंड के 2 ऋण लिए गए। निस्संदेह रेलवे सारे देश के विकास तथा उसकी सुरक्षा दोनों के लिए अत्यधिक महत्व की संपदा थे। प्रांतीय स्वार्थ निश्चित रूप से इसके निर्माण में ज़्यादा फलोत्पादक नहीं थे, जिसके कारण सरकार उनके राष्ट्रीयकरण की बात सोचने को बाध्य हुई। परंतु रेलवे राष्ट्रीयकरण ने सिचुआन प्रांत में एक छक्के छुड़ा देने वाली उद्विग्नता को उत्पन्न कर दिया। प्रांतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष लुओ लून ने शेयरधारकों की संकटकालीन बैठक में सूचित किया कि सिचुआन वासियों का जीवन और धन संपदा शंग सुएन हुआए द्वारा विदेशियों को बेच दिए गए थे। उसने उनके साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का ऐलान किया। अन्य प्रांतों के लोगों ने भी पेचिंग के इस कार्य का विरोध करने हेतु स्वयं को संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप पाओ लुतुंग च्र हुए अथवा रेलवे सुरक्षा हेतु मैत्री संगठन का निर्माण हुआ। सिचुआन, जो इस संकट का मुख्य केंद्र बन गया था, के मामले में सरकार ने अन्य प्रांतों जैसे हुनान या कुआंगतुंग की तुलना में पक्षपात की नीति अपनाई। सिचुआन में केवल उतने ही धन की क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव किया गया जितना वास्तव में रेलमार्ग निर्माण पर खर्च हुआ था। यह मंजूर की गई राशि से काफी कम था। इसमें से भी कुछ भाग शंघाई बैंक में निवेश के कारण नष्ट हो गया, क्योंकि वह दिवालिया हो गया था। इस प्रकार वास्तविक स्थिति यह थी कि जो रकम सरकार ने सही में मंजूर की थी उससे केवल आधे से अधिक भाग का ही भुगतान हो पाता। फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों में समर्थन प्राप्त करने तथा रेलवे अधिकारों की पुनर्प्राप्ति हेतु संयुक्त मोर्चा खड़ा करने के लिए प्रतिनिधि भेजे गए। इसने मानचू के पद त्याग की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया, क्योंकि अब आर्थिक संघर्ष मानचुओं के विरुद्ध हो रहे राजनीतिक संघर्ष में विलीन हो चुका था। पृष्ठ संख्या 172, पीएच केंट यह समझते हैं कि सिचुआन का संघर्ष मूलतः केंद्र एवं प्रांतों के बीच अधिकारों का संघर्ष था। एक साम्राज्यवादी आलोचक की तरह वे लिखते हैं कि प्रांतीय संस्थाएं तथा उनके प्रमुख पेचिंग की बढ़ती शक्ति के प्रति चिंतित तथा सशंकित थे। वे केवल अपने संकीर्ण प्रांतीय हितों के लिए लड़ रहे थे, ताकि वे दरबार द्वारा उनकी शक्तियों में कटौती के प्रयास के विरुद्ध अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रख सके। परंतु यह दृष्टिकोण संघर्ष के केवल एक पक्ष को ध्यान में लेता है तथा अन्य अनेक मुद्दों को नज़रअंदाज करता है। लोगों की यह धारणा थी कि सरकार धन की खातिर देश के अत्यावश्यक हक का सौदा कर रही थी तथा रेलमार्ग विदेशियों को इसलिए सौंपे जा रहे थे ताकि भ्रष्ट दरबारी कुलीन वर्ग के निजी स्वार्थों को पूरा किया जा सके। लोगों की यह धारणा तब और दृढ़ हो गई जब सरकार ने सिचुआन के शेयर धारकों को पूरा भुगतान न करने का निर्णय ले लिया, जिससे अधिकांश लोग उद्विग्न तथा उत्तेजित हो गए। सरकार ने राष्ट्रीय महासभा से भी परामर्श नहीं किया। इससे लोगों के मन में गहरी शंका पैदा होनी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि ऐसी सरकार जो एक तरफ तो इस बात का दावा करती हो कि वह संवैधानिक व्यवस्था के लिए तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ वह इतने महत्वपूर्ण मसले पर राष्ट्रीय महासभा से परामर्श न करे, तो उसकी बातों पर विश्वास करना कठिन था। परंतु फिर भी सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह एक दूर की बात थी। हालांकि सिचुआन रेलवे कंपनी के निर्देशक मंडल, शेयरधारकों तथा जमानत के निर्माताओं, भद्रजन तथा व्यापारीगण ने इस मसले को लड़ झगड़ कर तय करने तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा कंपनी की संपदा का अधिग्रहण किए जाने के विरुद्ध नहीं झुकने का निश्चय कर लिया था। परंतु वे अभी भी सरकार को यह बात स्पष्ट रूप से समझाकर कि राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रेलमार्ग पर विदेशी स्वामित्व स्थापित हो जाएगा, इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की आशा कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 173। चाओ अरफंग, जिन्हें इस स्थान का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ने ठंडे दिमाग से कार्य करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि शक्ति का प्रयोग करने पर उल्टा असर पड़ सकता है। परंतु तुअंग फंग, जो सिचुआन हानखोउ तथा कुआंगचोउ हानखोउ रेलमार्गों के डायरेक्टर जनरल थे, चाओ के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और वह उन्हें किसी न किसी संकट में डालना चाहते थे। तुअंग फंग ने ली चिशयून को, जो सरकारी आदमी थे, और छंगतू में एक आम हड़ताल हो गई। समाज के सारे वर्ग इस हड़ताल के खुले समर्थन में आ गए। चाओ अभी भी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सेना की निष्ठा पर पूरा यकीन न था तथा उन्होंने यह भी सोचा कि शक्ति का प्रयोग करना वैसा ही होगा जैसा और अधिक ईंधन डालकर आग को बुझाना। परंतु प्रांत में स्थिति गंभीर हो गई तथा सैनिकों एवं जनता के बीच घमासान संघर्ष एक आम बात हो गए। सिचुआन में और अधिक सैनिकों को भेजा गया। अब सरकार ने दमन तथा तुष्टिकरण की दो मुही नीतियों से स्थिति को नियंत्रित करने का फैसला किया, परंतु स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। चाओ तथा तुअन के आपसी मतभेदों ने जले पर नमक का कार्य किया। ऐसी स्थिति आते आते छिंग दरबार में इस संयुक्त आक्रमण, जो न केवल सिचुआन की जनता का था, अपितु संघर्ष में सम्मिलित हो गए हुनान हपेई और कुआंततुक के लोगों का भी था, का मुकाबला करने का जरा भी संकल्प नहीं बचा था। रेलवे नीति पूरी तरह असफल हो चुकी थी तथा यह देश को उलझन से अव्यवस्था की ओर तथा कठिनाई से आपदा की ओर ले गई। तथापि अन्य क्षेत्रों की ही भांति यहाँ भी यह मामला रियायतों को अति विलम्ब से दिए जाने का था। आग पहले ही इस हद तक फैल चुकी थी कि अब इसे शांत नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में वुछांग में क्रांति छिड़ गई तथा सिचुआन रेलवे का विद्रोह राजवंश के विरुद्ध एक अधिक व्यापक क्रांति में सम्मिलित हो गया। छिंग शासक रेलमार्ग के मामले में गलतियों पर गलतियां करते चले गए और इससे उन्होंने अंदर ही अंदर अपने ही भविष्य को बिगाड़ एवं जनता के सारे वर्गों को अपने से विमुख कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजवंश के लिए अत्यधिक घातक निकले। रेलवे आंदोलन के क्रांतिकारियों को जनता के बड़े हिस्से में अपना प्रचार तथा प्रभाव फैलाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। इससे उन्हें छिंग शासन के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह खड़ा करने का मौका भी मिला। यद्यपि वे केवल संकीर्ण स्वार्थों एवं उद्देश्यों से अनुप्राणित थे, इसलिए यह, जैसा कि वीपी दत्त बतलाते हैं, दो बातों को प्रकट करता है, क्रांतिकारियों की सीमाओं तथा चीन क्रांति के लिए तैयार था। अक्टूबर 1911 ईस्वी को वुहान में हुई बम फटने की घटना ने क्रांतिकारी आंदोलन को और तीव्रता प्रदान की। तब अंततः 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को वुछांग विद्रोह हुआ, जिसे साधारणतया से दोहरा 10 यानी डबल 10 विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह पूरे देश में बढ़ती क्रांतिकारी स्थिति का परिणाम था। रेलवे से जुड़ा आंदोलन तथा सिचुआन जन संचालित सशस्त्र विद्रोह ही वे मुख्य कारक थे जिनके कारण विद्रोह छिड़ा। कुछ ही दिनों में सारा वुहान क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया। इसके बाद एक एक करके प्रांत अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे। एक सप्ताह के अंदर ही 11 प्रांत, जिनमें हपेई, हुनान, ईउनान, शानशी, चियांगशी, चियांगशु, चिरचियांग, फुचीएन, सचुआन तथा शांतुंग सम्मिलित थे, ने अपने आपको मंचुओं से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंतिम उपाय के रूप में मांचू युवन श्रखाय को लाए। वह अपनी शर्तों पर सम्मिलित हुए तथा उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब मांचू वास्तविक अर्थों में उनके चंगुल में थे। युवन श्रखाय ने प्रारंभ से ही शांति के संधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। उधर क्रांतिकारी भी अपनी समस्याओं, जिनमें आपसी फूट भी एक थी, का सामना कर रहे थे। लोगों को इस बात का भय हो रहा था कि कहीं चीन दो गत्यावरोधक खंडों में विभाजित न हो जाए। सुन यात सेन ने अस्थायी सरकार की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। बालक सम्राट फुई ने 12 फरवरी 1912 ईस्वी को सिंहासन खाली कर दिया। अपने पद त्याग की विज्ञप्ति में सम्राट ने युवन को एक अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार बनाने तथा एकीकरण के उपायों हेतु क्रांतिकारी सेना में समझौता वार्ता करने के लिए संपूर्ण शक्तियां सौंप दी। सुन ने युवन के समर्थक में इस्तीफा दे दिया, जिससे 13 फरवरी 1912 ईस्वी को युवन राज्य परिषद द्वारा निर्विरोध रूप से गणतंत्रात्मक सरकार के अस्थायी प्रोविजनल अध्यक्ष निर्वाचित हो गए।